morgen, chaque morgen, j'ai vu au velon. Sochona bas, belle courbe, on est belle au fond.
416-500-2-8000 स्ट्रेस चाहे लाख का हो या काकता उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000 लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
आहा, जगमग जगमग रोशन रोशन होम एड्रेस एलईडी साइन।
किताब का पहला सफा और घर का चुबारा घर वालों की निशानदेही करते हैं। जब रात उतरे तो एलईडी साइन आपके घर के नाम और नंबर को चमका दें, रोशन कर दें। अपने घर या बिजनेस के लिए एलईडी साइंस के लिए यूनिक साइंस के विक्रम जी 6475274482 6475274482। प्रोग्राम का रेफरेंस देना मत भूलिएगा।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। केटरिंग स्पेशल 8 आइटम्स फॉर जस्ट 9.99, मिनिमम 30 पीपल्स। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
दांतों का कोई भी मसला हो या करानी हो डेंटल क्लीनिंग, डॉक्टर फयाज एंड एसोसिएट्स आपकी पहली चॉइस। पैराडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, डेंटल इम्प्लांट, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एंड मच मोर। वार्म एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, जहां आप अपनी जबान में अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं। आपके पास डेंटल इंश्योरेंस है या नहीं, कोई मसला नहीं। स्कारब्रो में एक और मिसिसागा की दो लोकेशंस पर आपको सर्व करते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल कीजिए 9052325678 मिसिसागा 4167579999 स्कारब्रो।
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
न्याग्रा फॉल दी खूबसूरत सीनिक इलाके विच रहंदा सुनहरी मौका, एक नवा निकोर कार विकन लई दस्तयाब है, जिन्हू बनिया सिर्फ इको ही साल होया है। 4 बेडरूम, 3 वॉशरूम ते खुला डुला लेआउट। कार विच एंटर होंदिया ही तुहाडी तबीयत खुश हो जावे ते फॉल भी सिर्फ 5 मिंट दी ड्राइव ते। देर ना करो ते हुणे ही कॉल मिलाओ राणा सुहेल जी नू 416-312-6252 416-312-6252।
अदनान अलवी, प्रेसिडेंट लाइफ टाइम ग्रुप। अदनान अलवी को कौन नहीं जानता। आप पिछले 15 सालों से अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह अपनी इनकम और अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है। आपके लिए हमेशा यूनिक और इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आते हैं। अगर आप आज की बदलती हुई रियल एस्टेट मार्केट से परेशान हैं और चाहते हैं कि आप अपने पैसों को ज्यादा सिक्योर रखते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएं, तो आज अदनान अलवी से राब्ता करें 416-301-0249। नान कबाब, मॉडर्न अफगानी किचन, लजीज अफगानी ग्रिल कबाब, चपली कबाब, चौपांग कबाब, लैम शैंक, चिकन कोरमा प्लेट, फैमिली प्लेटर, कबाब रैप, फ्राइज, मंटू, बोलानी, फिरनी और सबके लिए बहुत से मजेदार खाने। अब आपके शहर मिसिसागा में एक और नई लोकेशन के साथ 5042 सैटेलाइट ड्राइव, यूनिट F3, मिसिसागा। फॉर ऑर्डर्स एंड रिजर्वेशंस विजिट नानकबाब.ca।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਏਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ, 801 ਬੋਵੇ ਡਰਾਈਵ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-450-2828, 905-450-2828।
उम्रा पैकेजेस के लिए एक ही नाम, अल हबीब ट्रेवल। आपके शहर में बरसों से उम्रा पैकेजेस, उम्रा ग्रुप पैकेजेस, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हज और ट्रेवल सर्विसेज की खिदमात पेश करते आए हैं। इसके अलावा अल हबीब ट्रेवल पाकिस्तान जनरल कौंसलेट सर्विसेज भी फराहम करते हैं, जैसे कि पाकिस्तानी वीजा, पाकिस्तानी पासपोर्ट, नायकॉप वीजा और पासपोर्ट की तस्वीर, दुनिया भर में मनी ट्रांसफर और कोरियर सर्विसेज भी शामिल हैं। मजीद मालूमात के लिए 905-554-7786। Open 7 days a week, Al Habib Travel.
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ की प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा, 416-894-5872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँगा।
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ, 416-894-5872।
और हर ट्यूजडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हों।
लर्न टू ड्राइव सेफली एंड कॉन्फिडेंटली, प्रोफेशनल ड्राइविंग लेसन्स विद HT ड्राइविंग स्कूल इन ब्रैम्पटन। अगर एलिजिबल हैं तो सिर्फ 7 दिनों में G या G2 लाइसेंस लें। MTO अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, अर्ली रोड टेस्ट अरेंजमेंट्स, हाई पासिंग रेट, पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ, मेल फीमेल इंस्ट्रक्टर्स और हाँ, इंश्योरेंस डिस्काउंट सर्टिफिकेट। गाड़ी चलाना सीख लेना इतना मुश्किल नहीं जितना सही तौर पर गाड़ी चलाना है। मजीद मालूमात के लिए कॉल HT ड्राइविंग स्कूल, 647-766-5398।
मुस्लिम वेलफेयर कनाडा अरसे दराज से कम्युनिटी की खिदमत करता आ रहा है। दुनिया भर में हंगामी इमदाद, पानी के पंप लगाना, फूड बैंक, रमजान बास्केट और कुर्बानी जैसे काम अंजाम दे रहे हैं। इस रमजान में अपनी जकात और सदका मुस्लिम वेलफेयर को दें ताकि दुनिया भर में मुस्तहकीन लोगों की मदद की जा सके। बरोज जुमा मार्च 15 2:30 PM रेडियो साजो आवाज 770 AM और ई आवाज TV पर मुस्लिम वेलफेयर कनाडा के लाइव रेडियो टेलीथॉन में हमारे साथ शामिल हों और दिल खोलकर ताबुन करें। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन विजिट mwcanada.org।
जी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहते हैं। हमारे फा मुजफ्फर आपके साथ और हमारे साथ जनाब
मोहतरम अब्दुल माजिद जमाल साहब।
आज का दिन बड़ा स्पेशल दिन है और 50 साल का जब रिकॉर्ड टूटा तो आप समझ लीजिए। आज ही मैं बल्कि पढ़ रही थी, आपको याद होगा सन 720 कबल मसीह में जो कैलेंडर जूलियस सीजर ने बनाया था कैलेंडर, उस कैलेंडर के तहत 10 महीने हुआ करते होते हो। तो ये 10 महीने मार्च से शुरू हुआ करते होते थे और ये जाते थे दिसंबर तक जाया करते होते थे। 2 महीने होते थे मगर वो काउंट नहीं हुआ करते होते थे और लंबा तरीन साल उसमें 402 दिनों का, 365 डेज होते हैं, जैसे इस साल 366 डेज होंगे वरना साल के 365 दिन होते हैं। ये ऑड नंबर्स में है। इस्लामिक महीनों के लिहाज से अगर हम साल को देखें तो साल इवन नंबर्स में होता है, 354 दिन का साल होता है इस्लामिक चांद के लिहाज से जो लूनर ईयर होता है। मगर ये कैलेंडर जो था बाद में इसको करेक्ट करना थोड़ी मुश्किलें भी पेश आई क्योंकि वो कहते हैं कि मतलब कोई चीज अपने टिकाने पे ही नहीं रही थी। फसल के सीजन में वो फसल का सीजन नहीं होता था, आप समझ लें 2 महीनों का मुगालता, फिर बाद में जनवरी और फरवरी को ऐड किया गया था। ठीक, कहां से बात चली और कहां चली गई, सन 750 कबल मसीह में मुझे लेके चली गई। मगर आज हॉटेस्ट डे ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे इन लास्ट 50 इयर्स।
1974 वाज द लास्ट टाइम के ऐसा टेम्परेचर आया था और आज जो है, रियली यू फील सो गुड आप बाहर निकले हैं, आपको मोटे जैकेट्स की और अपने हैट्स की और टूक्स की एंड ग्लव्स की जरूरत नहीं है।
जी साहब, आज के प्रोग्राम में अब से 5 मिनट के बाद मैं आपको पाकिस्तान लेके जाऊंगी, प्लीज आप अपनी सीट बेल्ट को बांध दीजिएगा। अगेन पाकिस्तान की जो सूरत है, सबसे पहले तो आप तमाम को मुबारकबाद हो कि पाकिस्तान में 26th प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया। हलफ वफादारी में सारे मुख्तलिफ लोग मौजूद थे, मगर पाकिस्तान की इट्स अ ग्रेट न्यूज। और साहब, सरसों पे हथेली जम गई। अब आप सोचेंगे ये क्या हुआ भाई, सरसों पे। अब जब जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, अगर वो नई कहावतें देंगे तो दैट्स व्हाट इट इज,
स्लिप ऑफ द टंग कहते हैं उसको।
या स्लिप ऑफ द टंग कहते हैं ऑफ कोर्स। आज के प्रोग्राम में आपसे 15 मिनट के बाद आपकी मुलाकात कराऊंगी। जनाब मोहम्मद मालिक साहब मेरे साथ होंगे। मोहम्मद मालिक जर्नलिस्ट हैं, लॉन्ग करियर है न्यूज़पेपर्स के साथ है, प्रिंट मीडिया के साथ, बहुत सारे टॉक शोज में आप इनको सुनते हैं। और जाहिर है ये ही इज अ ग्रेट मैन। उन्होंने एक बात आज की सूरत हाल के लिहाज से, जनाब मोहम्मद मालिक साहब से हम आपकी बातचीत कराएंगे। हम टेलीविजन के साथ हैं, इसके अलावा मेरा ख्याल है पीटीवी के साथ भी ये हुआ करते थे, मगर पीटीवी ने अपने बेहतरीन लोगों की कभी भी कदर ना की। वो जो लेग पुलिंग का एक सिस्टम है, दैट इज अ वर्स्ट सिस्टम। 92 न्यूज के साथ भी रहे, वेरी रिनाउंड पर्सन मोहम्मद मालिक। हम टेलीविजन के साथ भी रहे और जाहिर ऑफ कोर्स इज अ रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, प्रिंट मीडिया के साथ हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ आपका ताल्लुक रहा। अब से तकरीबन 4 मिनट के बाद जनाब मोहम्मद मालिक मेरे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया उन तमाम स्पॉन्सर्स का जिनके तवसुत से हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं। पहली खबर आज का कि हॉटेस्ट डे इन लास्ट 50 ईयर्स के रिकॉर्ड जो टूटे। क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट जाता है हमारे सिख पॉलिटिशियंस को। आज मेरे पास एक प्रेस रिलीज आई है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। हमारे प्रोविंस में ऑपोजिशन, ऑफ कोर्स ऑपोजिशन ने एक मोशन जो वो पास की है कि जी जितने ट्रक्स हैं ना, अगर आपने 401 की कंजेशन को खत्म करना है तो तमाम के तमाम ट्रक्स को रेट कम करके आप 407 की तरफ मूव कर दें। और जब आप उनको 407 की तरफ मूव कर देंगे, जिसकी वजह से हाईवे जो 401 है उसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो निस्बतन कम हो जाएगी। ये एक बिल जो पेश किया गया है, यकीनन उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आगे जाके शेयर करती चली जाऊंगी। बट साहब, एनवायरनमेंट, वो कहते हैं ये एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, क्योंकि सारी की सारी ऑपोजिशन, ये दुनिया जहान में ऑपोजिशन इज फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, वो कहते हैं हाईवे 413 बन गई तो एनवायरनमेंट को बड़ा खतरा है। एनवायरनमेंट को क्या खतरा है जी? एनवायरनमेंट को खतरा यह है, बाकी उसमें इस इलाकों में रहते भी मेरे जैसे लोग हैं। हमारे जैसे लोग जो हैं डेफिनेटली अपनी अपनी फेवर्स को बड़ी आसानी के साथ, अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी इतने आराम से आके सेटल हो गई थी, तभी तो आज भी जो पाकिस्तान की सूरत हाल नजर आ रही है इन्हीं ग्राउंड्स पे, तो आपको आज की सूरत, आप उधर से चलना शुरू कीजिएगा। हाईवे 412 आती है, उसके बाद 404 आती है, फिर 400 आती है, फिर एलन रोड भी किसी हद तक एडलिंटन तक आपको लेके जाती है, वो भी अ काइंड ऑफ हाईवे है। और उसके बाद अगर आप फर्दर चले जाते हैं तो कोई भी ऐसी रोड नहीं है जो नॉर्थ साउथ जाके मिलाती हो, आई हैव नो क्लू, जिसमें ऑपोजिशन के लीडर्स जो बैठे हुए हैं, जिसमें एनडीपी है और लिबरल्स जो बैठे हुए हैं, उनके पेट में सिर्फ इतनी तकलीफ है कि ये 413 बनेगी तो ऑफकोर्स इस इलाके के लोगों के लिए सहूलत पैदा होगी और जो आपकी कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट है उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। भाई खुदा के नेक बंदो, आप हमारी तरफ देखिएगा कि हमारे लिए वहां से वहां तक इशारों को क्रॉस करते हुए हर बुश के बीच में और तमाम वुड्स के बीच में पुलिस लुक के बैठी हुई है, गाड़ियों की वेयर टियर होती है, उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। बहरहाल आज उन्होंने कहा है ये टोरंटो की ट्रेडिशनल टेरिटरीज हैं, मिसिसागा एंड क्रेडिट और मुख्तलिफ इलाके, उन्होंने ये कहा है कि यहां पर $10 बिलियन खर्च करके जो हाईवे 413 तामीर की जाती है, उन्होंने 413 को स्कैम का नाम दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन ने जो बिल है इसमें प्रपोज किया है कि 407 जो ETR है उस पर तमाम कमर्शियल ट्रक्स को मूव कर दिया जाए। ये कमर्शियल ट्रक्स एक दिन के बीच में 12,000 से लेके 21,000 ट्रक्स हैं, 12,000 से लेके 21,000 ट्रक्स हैं जो कि 410 से आपके सारे के सारे कमर्शियल ट्रक मूव होंगे। कार्बन टैक्स आप ऑलरेडी दे रहे हैं, कमर्शियल ट्रक जब वहां मूव होंगे तो आप उनकी ETR पे रेट कम भी कर देंगे, आपकी फिर भी चीजें और ज्यादा महंगी हो जाएंगी।
फ्री दे दो, फ्री
नो, नॉट फ्री, नॉट फ्री, दे आर नॉट आस्किंग फॉर फ्री। वो कहते हैं कि
टोल निकाल दो उसमें, उनका कहना है कि
हाउ कैन दे टेक आउट टोल ऑन 407 बिकॉज 407 इज अ प्राइवेट रोड।
थैंक यू।
हाउ कैन दे टेक आउट टोल?
थैंक यू। यही मैं कह रहा हूं उनसे कि इनको इतना पता होना चाहिए कि ये प्राइवेट है और इसके अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो इसका जवाब जो है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है ओंटेरियो के प्रवीत सरकारिया, उन्होंने ये कहा कि हमने तो 412 एंड 418 का जो है टोल हटा दिया, आप लोगों की इतने सालों गवर्नमेंट थी, आप लोगों ने क्या किया,
आप लोगों ने क्या किया। और हाईवे 413 इज जरूरत, आप इसको स्कैम का नाम लेते हैं, आप कहते हैं जी ग्रीन बेल्ट खत्म हो जाएगी, ग्रीन बेल्ट का तो आपने ऑलरेडी बेड़ा कर किया, 50 साल का आज रिकॉर्ड टूट गया कि गर्म तरीन इस पूरे के पूरे सीजन के बीच में आप देख लीजिएगा बर्फ कितनी पड़ी है, और ये बर्फ ना पड़ना ये दिस इज नॉट अ गुड साइन, इट इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। दिस इज जो मौसम के मुताबिक उस जगह की जरूरत है कि यहां पर बर्फ भी पड़नी चाहिए, हमारे दरिया चलते रहे, पानी की कमी ना हो, एंड वाटर इज अनदर थ्रेट टुमारो। ऑफिशियल ऑपोजिशन का प्लान ये है, उन्होंने कहा अवॉइड मैसिव एनवायरमेंट हार्म एसोसिएटेड विद द ये जो मल्टी लेन की आप 413 बना रहे हैं ना, ये इसने इसमें वो कहते हैं 2400 एकड़ जो है वो ग्रीन बेल्ट जो है वो खर्च हो जाएगी। और आप मुझे बताइएगा कि 407 भी तो बनी थी ना, उसमें कितनी आपका ग्रीन बेल्ट उसके हिस्से में आई थी। दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द वेस्टर्न एरिया। आगे आप इसको देख लें, आप शेलबॉर्न का इलाका आ जाता है, जॉर्ज टाउन का इलाका आ जाता है, ऑरेंज वेल का इलाका आ जाता है, और आपकी इंडस्ट्री नॉर्थ की तरफ अगर आप शेलबॉर्न से ऊपर चले जाएं, डंडाक की तरफ चले जाएं, तो वहां आपकी इंडस्ट्री सेटअप हुई है। वी डेफिनेटली नीड हाईवे 413, मगर मेरे आपके जैसे बहुत से लोग जाहिर है अपनी सीट को पक्का करने के लिए और यू नो कल कलां को टिकट लेने की खातर दे आर के भाई हाँ जी 413 इज एनवायरमेंटल हैजर्ड। ये जो तोपें और टैंक चल रहे हैं, जो आपकी मिसाइलें चल रही हैं, वो एनवायरमेंट के लिए हैजर्ड नहीं। ग्रेटा तम वो जो बच्ची थी उसने यही तो कहा था, स्टॉप दिस वॉर, सेव द एनवायरमेंट। वहां आपने असला बेचना, बहरहाल यहां पे फिर वो जो लोग सपोर्ट करते हैं खास पार्टीज को, वो फिर ये कहते हैं नहीं 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 वो ना दरअसल वो अभी मेरी वो फेडरल की और पॉलिसी है और प्रोविंस की और पॉलिसी है। एक ही पार्टी है, फेडरल में और प्रोविंस के बीच में अगर एक ही पार्टी है, आपके अंदर का खाता तो बिल्कुल एक ही जैसा है। बहरहाल इट्स अ बिग कंसर्न, नथिंग अगेंस्ट दोज हु सपोर्ट द ऑपोजिशन, बट अनफॉर्चुनेटली 413 इज मस्ट। अगर आपने एनवायरमेंट को कंट्रोल करना है तो वी गॉट टू स्टॉप वॉर्स, वी गॉट टू स्टॉप अदर थिंग्स रादर देन कि अगर आप, और जितनी ट्रैफिक आपकी जैम होती है उतना ज्यादा एनवायरमेंट में का नुकसान होता है, दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स एनवायरमेंट। अगर आप ग्रीन बेल्ट की बात करते हैं तो 407 जब बनी थी तो तब ग्रीन बेल्ट नहीं थी, और अगर आपके ट्रक्स उस साइड के ऊपर जाएंगे और वो टोल पे करेंगे, क्योंकि इनका प्रपोजल ये है कि आप जो ट्रक्स हैं उनसे आप चार्जेस कम लेना शुरू कर दें, यानी उनका टोल कम हो। कैसे टोल कम होगा? नोबडी कैन कंट्रोल दैट टोल। कंजर्वेटिव ने हाईवे 412 और एक और हाईवे है उसके टोल को खत्म कर दिया, मगर 407 इज अ प्राइवेट रोड, यू कैन नॉट कंट्रोल इट्स टोल। कैसे अगर आप सारे के सारे कमर्शियल ट्रक्स को उधर ले जाएंगे तो फिर आप देखिएगा आपकी खाने पीने की चीजें कितनी महंगी होती हैं। एनीवेज ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں خوش آمدید. گیٹ ریڈی, وی کین بی اینی منٹ ان پاکستان. اور میرے ساتھ ہوں گے جناب عبد المالک صاحب, ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں, اینڈ آف کورس ہم آج کی بات ہی کریں گے. میں ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں, خدا کرے کہ پاکستان کی صورتحال نسبتاً بہتر ہو جائے. ہمارے 26th پرائم منسٹر نے اپنا حلف بھی اٹھا لیا. اور جناب عبد المالک صاحب, سر السلام علیکم, بہت شکریہ. بیکاز ہی از ٹریولنگ اینڈ انفارچونیٹلی وی کوڈ ناٹ کانٹیکٹ ہم اوور دا اسکائپ, سو اٹس اوکے, آئی ول میک یو لسن ٹو ہز وائز انالیسز. سر السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
سر آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا, تھینک یو ویری مچ. آپ کو مبارکباد ہو سر کہ پرائم منسٹر نے تو حلف اٹھا لیا, مگر آپ کی کیا کہنا ہے اس کے بارے میں کہ جو آواز ہے بڑی بلند ہے اس وقت کے, ریگنگ ہوئی, اور جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں آج ان کے ساتھ ایک اور جو کام کیا گیا کہ ان کو وہ جو مختص نشستیں ہیں اس کے بارے میں, ظاہر ہے ان کی بھی غلطی ہے, ڈیفینیٹلی ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے پہلے اپلائی نہیں کیا تھا, مگر یہ شنید بڑے دنوں سے چل رہی تھی کہ وہ جو ان کی مخصوص نشستیں ہیں ول بی ڈیوائڈیڈ امنگ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اینڈ ایم کیو ایم. سو ان دونوں باتوں کے بارے میں کہ اب پاکستان کی اسٹیبلٹی یا جو اکنامک سچویشن ہے وہ کتنی اسٹیبل ہو جائے گی آفٹر پرائم منسٹر ٹیکنگ اوتھ, نمبر ون, اینڈ نمبر ٹو یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے بارے میں.
دیکھیے, زیادہ تو الیکشن کا تعلق ہے, اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ میسیو ٹینکرنگ ہوئی ہے ریزلٹس کے ساتھ. اگر آپ کہیں کہ الیکشن ڈے کی ریگنگ ہوئی تھی ہے, الیکشن ڈے میں ٹھیک ہوا, پری پول آپ نے دیکھا کہ ایک پارٹی کو مثلا پی ٹی آئی کو, یا تو وہ ان کے لوگ غائب تھے یا تائب تھے, اور سزائیں بھی ہو گئی, چیئرمین کو ان کا نشان لے لیا گیا, پھر کوئی کنوینسنگ کی اجازت نہیں تھی, مین جتنے شہر تھے وہاں پہ پرنٹرز کے پاس پرمیشن نہیں تھی کہ وہ ان کے پوسٹر چھاپیں, بینرز چھاپیں, تو ان کا الیکشن تو سارا ہوا ہی سوشل میڈیا پہ ہے, جہاں انہوں نے انفارم کیا ایک دوسرے کو کہ کیا نشان, کس کا کیا نشان ہے, سب کچھ ہے. اور بہرحال دے میسو ٹرن آؤٹ ہوا, لوگ آئے, اگرچہ خیال یہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا, اتھارٹیز کا, کہ اتنی ایک انٹیمیڈیشن کی فضا بن گئی ہے کہ لوگ ان کا خیال تھا نہیں آئے گا, لیکن دیکھیے سڑک پہ آ کے جلوس نکالنے میں اور خاموشی سے جا کے ووٹ ڈالنے میں بڑا فرق ہے. تو لوگوں نے خاموشی سے جا کے ووٹ ڈالا, اور ٹرینڈ جب الیکشن کے ریزلٹس آنے شروع ہوئے تو بڑی جلدی ٹرینڈ میں نظر آ گیا کہ بہت میسو ایک سائڈ پہ بات جاری ہے. بلکہ ہم تو مجھے یاد ہے الیکشن اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن ہم جو کر رہے تھے تو ہم آپس میں مذاق میں کہہ رہے تھے کہ یار گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا, ٹرینڈ بڑے ایک طرف کے آ رہے ہیں, تو یہ ابھی تک سسٹم بیٹھا کیوں نہیں. تو پھر ہم نے دیکھا کہ گھنٹے ڈیڑھ کے بعد ہی سڈنلی پتا لگا کہ جی انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے اور ساری سروسز غائب ہو گئی ہیں, اور پھر جو کچھ ہوا فرینکلی وہ سب کے سامنے ہے. آج کا جو فیصلہ تھا ریزرو سیٹس کا, یہ کوئی سرپرائزنگ نہیں تھا. وی وار ویری کلیئر کہ جب جیتی ہوئی سیٹس نہیں مل رہی تو مانگے کی سیٹس کیسے ملیں گی. اگرچہ الیکشن کمیشن کا کہا جا رہا تھا کہ ڈسکریشن ہے, اس میں دو بڑے انٹرسٹنگ ایگزامپلس ہیں. ایک لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے جس میں یہ رولنگ تھی کہ سیٹس کسی پارٹی کی آپ دائیں بائیں دوسروں کو دے ٹرانسفربل نہیں ہے. اور سیکنڈ ایک 2018 میں بھی ایک پریسیڈنٹ ہے کہ کے پی کے اندر جب زم ہوا تھا فیڈرل ٹرائبل ایریاز, تو اس کے بعد ان سیٹوں کے اگینسٹ اسپیشل سیٹ آئی تھی, تو جو بلوچستان والی پارٹی تھی اس نے الیکشن نہیں لڑا ہوا تھا, اس نے الیکشن نہیں لڑا تھا بلوچستان میں, لیکن ان لوگوں نے جوائن کر لی بلوچستان عوامی پارٹی. تو ان تھری سیٹس کے اگینسٹ جو ایک سیٹ ملی خاتون کی, وہ باپ کو الاٹ کی تھی اسی الیکشن کمیشن نے. بہرحال وہ اب عدالتوں کی باتیں ہیں, چیلنج ہوں گی, سب کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ عدالت میں جائے گا. تو یہ تو ہے تاریخ اسپیشل سیٹس کی اور جو الیکشن کی ریالٹی تھی.
اور
سیریس ایشوز ہیں.
جی سر.
سوری.
جی سر, آپ کیری آن پلیز.
تو سیریس ایشوز ہیں. پھر ہمارے یہاں پہ ایک فارم 45 ہوتا ہے, फॉर्म 45 वो होता है जो हर पोलिंग स्टेशन का जो ऑफिसर होता है वो बना के उस पोलिंग स्टेशन का भेज देता है अपने सेंट्रल ऑफिस में इलेक्शन कमीशन में, और उस हल्के के तमाम पोलिंग फॉर्म 45 इकट्ठे करके उसके ऊपर से फॉर्म 46 और फिर अल्टीमेटली फॉर्म 47 बनता है। अभी तक देखिए इलेक्शन कमीशन ने ये 22nd की डेडलाइन थी कि 22nd तक इनको वो डालने थे तमाम फॉर्म 45 और 47 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, जो नहीं डले। अब इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, हर कोई अपने फॉर्म 45 लेके फिर रहा है, जो पीटीआई वाले हैं वो फॉर्म लेके फिर रहे हैं, जो वो क्लेम करते हैं इलेक्शन कमीशन उनके हैं, इसी तरह दूसरे भी लेके फिर रहे हैं। तो इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन आज तक वही सर्टिफाई नहीं हो सके। सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स और बड़ी ऑब्वियस एक मैनिपुलेशन हुई है। अब स्टेबिलिटी देखिए, स्टेबिलिटी कहां से आती है? स्टेबिलिटी आती है जब एक गवर्नमेंट की मॉरल लेजिटिमेसी हो, अगर इखलाकी उसके पास मैंडेट भी होना जरूरी है, खाली इलेक्टोरल मैंडेट नहीं होता। अभी बहुत सख्त सवालात हैं, अभी काबीना भी बननी है, अब कैबिनेट के अंदर किसको क्या मिलता है, क्या एलायज उस कैबिनेट मेकिंग से खुश है नहीं है, वो भी चीजें सामने आएंगी। सो अभी स्टेबिलिटी तो थोड़ा सा इट्स टू अर्ली टू से दैट, क्योंकि हमने जो 3-4 दिन माहौल देखा है नेशनल असेंबली में भी बड़ा ही वॉलेटाइल माहौल है, बड़ा ही एग्रेसिव माहौल है, और खासतौर पर जो MNA खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं वो तो बहुत ही जज्बाती हैं। मैंने अब पता नहीं 6th-7th पार्लियामेंट है जिसको मैं कवर कर रहा हूं, मैंने इतना जज्बाती माहौल नहीं देखा, इतना एग्रेशन नहीं देखा MNA में जितना उनके है। सो अभी तो ये तमाशा चलेगा, अभी
सर आप
स्टेबिलिटी का पता लगेगा बजट के बाद।
जी सर, आप दराज का सहाफी हैं, आपने सर जिंदगी में बहुत पढ़ा, बहुत देखा लिखा। KPK ने, खैबर पिशावर ने ऑलवेज प्ले किया, रेजिस्ट भी किया, इवन जो हमारे फॉरेन इन्वेडर्स भी आए थे, तो दिस इज KPK विच प्लेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, सो एवरीबडी हु वॉज एंट्रिंग इन सब कॉन्टिनेंट दैट टाइम, सो आई थिंक सो KPK विल प्रूव इट सेल्फ। मेरा आपसे एक सवाल जो यहां पे मेरा बनता है, पाकिस्तान की 3 पार्टीज जिसमें जमात इस्लामी का मैं जिक्र करती हूं, विद ऑल माय रिस्पेक्ट जनाब सिराजुल हक साहब, MQM है, और ऑफ कोर्स चंद एक और पार्टीज हैं, जनाब फजल रहमान साहब की गो कि उनकी रिलीजियस स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, और पाकिस्तान में अंधाधुंध तकलीद भी आपको पता है चलती है, मगर ये वो बाट है या ये वो वजन है जो अल्टीमेटली तराजू को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस इलेक्शन के बारे में जनाब सिराजुल हक साहब ने कहा कि पहले मुल्क में वोट चुराए जाते थे, इस बार तो रिजल्ट ही चुरा लिया गया, यानी वो पार्टी जो उनके लिहाज से बैलेंस करने के लिए किसी को छोड़ती थी, डिस्टेबलाइज करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए साथ देती थी, अगर वो पार्टी भी ये कह रही है तो वो इदारे क्या तसव्वुर करते हैं इस बात से?
देखिए, एक और ये मैं बात ने अपने प्रोग्राम में भी रिपीटेडली रेस की है, एक और बड़ी डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है। देखिए, पाकिस्तान में 2 प्रोविंसेस हैं जहां पे रेस्टिव प्रोविंसेस आप कह सकते हैं, बड़ी सिचुएशंस हैं जहां पे टेररिज्म है, जहां पे इश्यू है, एक तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर है तो हॉस्टाइल ही हो गया है, तो KP और बलोचिस्तान 2 रेस्टिव प्रोविंस है। अब बलोचिस्तान, अब पहले KP की बात कर लीजिए, अब देखिये KP के अंदर जो गवर्नमेंट है PTI की, वो उसका क्लैश फौज से भी है और वफाक से भी है। जो वहां पे रिलेटिवली मॉडरेट प्रोग्रेसिव पार्टी थी अवामी नेशनल पार्टी, उन्होंने भी सीधी सीधी बंदूकों का रुख फौज पे कर दिया है। पिछले दिनों एमल वली ने जो जलसों में कहा, स्टेटमेंट रहा, बहुत हार्श लैंग्वेज थी, मैं उनको अपने प्रोग्राम में भी लिया, उससे ज्यादा उन्होंने हार्श बातें की। अच्छा, मौलाना फजल रहमान जो हमेशा से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं अस्करी इदारों से, और वो एक मॉडरेट फोर्स थे रिलीजियस एलिमेंट्स के लिए, और देखिए वो एक बफर भी थे बिटवीन लेफ्ट एंड, और एक बफर था बिटवीन रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, और जब आप मॉडरेट को बिल्कुल इररिलेवेंट करेंगे तो वो स्पेस फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ले जाते हैं। अच्छा, वो भी खुल के आ गए हैं फौज के ऊपर, खुल के, कोई 2 होल्ड्स बार्ड। अच्छा, پشتون تحفظ موومنٹ کا پہلے کیا چل رہا ہے ودامی اینڈ آل, تو کے پی اتنا ولیٹائل بن گیا ہے کہ جہاں پہ عوام ان کے, جہاں پہ گورنمنٹ آف دا ڈے, جہاں پہ جو تین مینشنبل الیکٹورل پروسیس والی جماعتیں اے این پی, جے یو آئی ایف, جماعت اسلامی جیسے آپ نے مینشن کیا, وہ یہ سارے سیدھے ہو گئے. ساتھ یا بلوچستان میں جائیں تو وہاں پہ محمود اشرف زئی صاحب ملی پختونخوا پارٹی کے, وہ انہوں نے اتنی سخت تقریر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی جو فوج ہے یہ چار ضلعوں کی فوج ہے پنجاب کی, اور اس کو اب پاک آرمی کیسے کہتے ہیں. پھر انہوں نے ود ان پاکستان ایک پشتونستان بنانے کی بات کی. اور اب انٹرسٹنگلی وہ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ بھی ہیں اگینسٹ آصف زرداری, اور یہی محمود اشرف زئی صاحب ہیں جن کے بارے میں بہت ہی تحقیر انگیز رویہ عمران خان صاحب کا ہوتا تھا. اور آپ نے ان کی اسپیچ بھی دینی ہوگی جہاں وہ کہتے تھے میں تو سمجھ رہا تھا بڑا بنا دیا چادر لے کے, لیکن بالکل انہوں نے کہا جی دو نمبر آدمی ہیں, لیکن آپ پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کر رہی ہے پریزیڈینشیل الیکشن میں. سو ایک ویو سی بن گئی ہے دو ریسٹو پروونسز میں جہاں ساری نے نشانہ لے لیا فوج کا. یہ ایک بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے. پھر اب جو ووٹنگ پیٹرن آیا ہے, اس ووٹنگ پیٹرن میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پنجاب کی پاپولیشن ہیز ووٹڈ اگینسٹ دی آرمی. پنجاب ہمیشہ سے اسٹرانگ پوائنٹ تھا فوج کا, سب سے زیادہ ریکروٹمنٹ جوانوں آفیسرز کی اسی بیلٹ میں ہوتی تھی. وہ بھی اب ایک بڑا ہی ایک نیگیٹو ریئیکشن آیا سب کچھ. تو یہ چیزیں جو ہیں جو ان دا لانگ ٹرم کین بی ویری ڈیسٹیبلائزنگ. میں ان کو میں جوڑ رہا ہوں ذکر جو آپ نے شروع میں اسٹیبلٹی کا کہا ہے. تو اگر اسلام آباد میں انسٹیبلٹی ہے اور سیریس نیشنل لیول پہ پولیٹیکل ایشوز چل رہے ہیں لیجیٹیمیسی آف دا پولز کے, اور ایک ہی بائنڈنگ فورس ہے جو چیزوں کو سنبھال سکتی تھی, وہ فوج تھی ہمیشہ سے بیلنس کریٹ کرتی تھی, وہ آربیٹر کا رول پلے کرتی تھی, وہ اب ایک ڈائریکٹ ایڈورسری بنا دیا ہے ان کو باقی پولیٹیکل فورسز نے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اب اسٹیبلٹی کا آنا. یہ دیکھیے آل سڈ اینڈ ڈن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ اب سچویشن تھی بٹوین ٹو انڈیویجلس, ایک طرف عمران خان ہے ایک طرف آرمی چیف ہے. جب تک یہ دونوں لوگ اگینسٹ دا گرین آف دیئر پرسنالٹیز دو دو قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ایک کوئی رپروشما کی فضا نہیں بنے گی, تب تک میرا خیال ہے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. گورنمنٹ تو بھی چلے گی, گورنمنٹ فنکشننگ اینڈ گورنمنٹ ڈلیورنگ آن اے لمیٹڈ اسکیل یہ اور چیز ہوتی ہے, اور نیشنل اسٹیبلٹی مختلف چیز ہے. سو ابھی پروسیس تو ہو گیا, الیکشن کا پروسیس تو ہو گیا, پارلیمنٹ کا بن جانا, اوتھ ٹیکنگ ہوگی پروسیس ہو گیا, ایک وزیر اعظم بن جانا وہ بھی ہو گیا, اب ایک کابینہ بھی بن جائے گی اور ایک پروسیس چل بھی جائے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی کیا پیس ہوگی اور کیا ایفیکیسی ہوگی, کیا اس کا ڈلیوری کا معیار ہوگا, وہ اس میں بھی بہت سے کوشچن مارکس ہیں.
سر میں ایک عام پاکستانی ہوں, ظاہر ہے بہت سی چیزوں پہ پریشان ہوتی ہوں, آپ بڑی کمپیکٹ بات چیت کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریمورس, ریگریٹ, مجھے کسی کے چہرے کے اوپر وہ ریگریٹ نظر نہیں آ رہا کہ جو ہوا غلط ہوا, اینڈ اٹ کین لیڈ ٹو اے رانگ ڈائریکشن, کوئی بھی اس چیز کو فیل نہیں کر رہا. مجھے سعد رفیق صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے, انہوں نے میرا خیال ہے کیبنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ دیر ول بی اے ٹائم کہ یہ لوگ پلیٹ میں لے کے وزارتیں پھریں گے تو کوئی وزارت لینے کے لیے ہم ہی نہیں بھرے گا. ایگزیکٹلی یہ سینیریو اس وقت نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ساتھ تو دے دیا, بٹ دے گاٹ دا بیسٹ پوزیشن وچ از اے پریزیڈینشیل پوزیشن, کہ وزیر اعظم آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, پریزیڈنٹ صاحب اپنی جگہ پہ رہیں گے. مگر بلاول صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائی ہوتی تو ہم اور وزارتیں لیتے اور اہم پوزیشنیں لیتے, ہم صرف ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں. ہاؤ اٹ از پاسبل کہ there is somebody who is the president of Pakistan from People's Party, تو how would it work کہ یہ رشتہ جو ہے یہ چل سکے گا؟
دیکھیے پہلی بات ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس پاورز نہیں ہے, یہ اٹس مور اے سمبولک تھنگ اور سیریمونیل, اور یہ ابھی بھی پریزیڈنٹ کا عہدہ شاید اس لیے سب کو زیادہ پاورفل ایک دم رکھنا شروع ہو گیا جب ڈاکٹر الوی نے فارمر پریزیڈنٹ تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے بہت جگہ پہ سبلک بلاکس بنائے, پریزیڈنٹ صاحب چیزوں کو ڈیلے کر سکتے ہیں، ڈینائی نہیں کر سکتے فرینکلی ایٹ بیسٹ. سو یہ سمبلزم زیادہ ہے اور پاورز ورچولی نان ایگزسٹنٹ ہی ہے. جو میں نے کہا نا ہی مائٹ ڈیلے بٹ کانٹ ڈینائی. سو اس لیے ایک حد سے زیادہ اس کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. اور یہ اگر پیپلز پارٹی بھی سمجھ دی ہے کہ وہ ٹوٹلی اٹ ول واک اوے کلین فرام ایوری تھنگ، اتنا سمپل نہیں ہے. لیکن جب بجٹ پاس ہوگا تو ان کی مدد سے بجٹ پاس ہوگا، کوئی بھی میجر پالیسی ڈیسیژ ہوگی ان کے اوپر بھی مہر تو لگانی پڑے گی ان کو. سمپل میجورٹی تبھی آئے گی اگر پیپلز پارٹی ووٹ کرے گی گورنمنٹ کے ساتھ. تو یہ بھلے جتنا مرضی کہیں کہ ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں اور اپنے آپ کو ڈسٹنس بھی کریں، لیکن چھینٹے ان پہ بڑے ٹھیک ٹھاک پڑیں گے. اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن، بیکاز جس کے سر پہ گورنمنٹ کھڑی ہوتی ہے اسی کو گالی پڑتی ہے. آج فوج کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ مجھے یاد ہے جب عمران خان کی گورنمنٹ کے پرابلمز ہوتے تھے اور ڈلیوری کے ایشوز ہوتے تھے تو تب بھی فوج کو سارے سناتے تھے کہ جی یہ لائے ہیں نا عمران کو اور عمران ڈلیور نہیں کر رہے، یہ لائے ہیں عمران کو اور عمران نے بزدار کو بنا دیا سی ایم پنجاب میں، دیکھے پنجاب کا بڑا غرق ہو گیا. تو بھلے وہ عام ریزسٹنس میں تھے لیکن ان کو بوجھ اٹھانا پڑا اس کا. سملرلی اب پیپلز پارٹی کے پارٹنر ہے اور ان کے سر پہ گورنمنٹ کھڑی بھی ہے، تو وہ کل کو اپنے آپ کو تھوڑا بہت تو شاید ڈسٹینس کر سکیں اور کہیں پہ شور وور بھی ڈالیں. مثلاً اگر پرائیویٹائزیشن کی بات ہوگی جو اس گورنمنٹ کا پرائمری ایجنڈا ہے اور جس کے بغیر گزارا نہیں ہے اکنامک ریوائول کا، تو اس پہ وہ ہاؤس میں بھی شور شور ڈالیں گے لیکن وہ پالیسیز آگے امپلیمنٹ ہوں گی. تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ ملبہ کم پڑے گا، لیکن اگر پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ ہمارے پہ ملبہ نہیں پڑے گا، ہم بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیبنٹ میں نہیں ہیں اس لیے ہمارا ذمہ نہیں ہے، دس از رانگ. بیکاز ان کی سپورٹ اور اوپن اسٹرانگ بیکنگ کے بغیر تو گورنمنٹ ایک سمپل بل پاس نہیں کروا سکتی. سو آئی تھنک یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اور سارا الزام پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر اور وزیر خزانہ والا میں پڑے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے. سو دے مائٹ تھنک دیٹ دے ہیو دا بیسٹ ڈیل، لیکن یہ اتنی پرفیکٹ ڈیل بھی نہیں ہے.
بہت شکریہ. میں اپنی آواز صرف اتنی اٹھانا چاہتی ہوں کہ جب ہم کپڑے اتارنے میں، فیشن کرنے میں، دنیا کے ساتھ پیسے کی انویسٹمنٹس میں اگر ہم مغرب کی تقلید کرتے ہیں تو مغرب کی تقلید میں یہ بھی آتا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہے. دس از ویری انفارچونیٹ کہ ایک ہی خاندان کے افراد، اور میرے آئی ہیو اسٹرانگ ریزرویشن کہ باپ بیٹا بھائی بیٹی کے پاس ہے تو آپ تو ملک میں جو مرضی قانون لے کے آئیں اور بیک ڈور سے آپ پیسے کو کہاں سے کہاں لے جائیں. سر صداقت اور امانت کی جب بات ہوتی ہے، پاکستان کے قوانین میں جو بندہ بھی الیکشن میں حصہ لیتا ہے یہ پابندی ہے کہ اس کے پاس ڈیول سٹیزن شپ نہیں ہونی چاہیے، از دیٹ رائٹ؟
جی وہ
ایشو. اچھا جی، اب ایک میں ویڈیو بھی، جو لوگ ہمارا ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، مراد علی شاہ کینیڈا میں تھے، کچنر میں تھے اور اپنی وائف کے جو آئیڈینٹی کارڈ ہے اس کو رینیو کرنے کے لیے آئے ہیں، ڈرائیور لائسنس کو رینیو کرنے کے لیے آئے ہیں. یو کین واچ اٹ کہ شی واز فلنگ اپ ہر پیپر اینڈ دس از ناٹ دیٹ اٹس اونلی ہز وائف ہو کیم اینڈ مراد علی شاہ ویری ریسپیکٹبل مین، اس میں کوئی شک نہیں، ہی از اگین وزیر اعلی سندھ کے ہیں، مگر یہ پک اینڈ چوز کیوں ہے؟ وائی؟ بیکاز دس مین کہ ہمارا پاکستانیوں کا فیبرک اتنا لو اینڈ یعنی لوز فیبرک ہے کہ ہم پیسے کے لیے اور پوزیشن کے لیے وی آر ریڈی ٹو لائے اوتھ میں بھی، از دیٹ رائٹ؟
نہیں، ان کی وائف مجھے کوئی فرینکلی اس کا پتا نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی وائف نیشنل ہے کہ وہ خود بھی ڈیول نیشنل؟
سر آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہم پاکستانی میاں بیوی اکٹھے ہی ہوا کرتے ہیں پوزیشن کے لیے اگر میاں فار دا ٹائم بینگ نہیں ہے. یو آر ویری سویٹ، یو آر ویری نائیو ان دس ریسپیکٹ.
میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں میں تو بھی ٹیکنیکل بات.
جی سر، ہز وائف واز ہیئر ٹو رینیو.
ان کے پاس وہ لیگلی کہیں گے جی میرے پاس تو نہیں ہے.
एंड दिस इज व्हाट इट इज सर. लोग क्या करते हैं पोजीशन को हाथ में रखने के लिए, दे हैव दैट अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल कंट्री कैनेडा. कि अगर बीवी किसी की या बच्चे यहां पे हैं तो हस्बैंड कैन कम एनी टाइम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इट माइट बी पॉसिबल ही हैड इट, बट एनी वेज
टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप एक चीज देखिए कि इंटरेस्ट तो हमेशा हमारे यहाँ पर्सनली चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इतने इश्यूज बने हैं पाकिस्तान ने आज तक, अमरीका, यूके एंड इवन EU वगैरह एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन नहीं की बिजनेस के लिए. आपका क्या ख्याल है क्यों नहीं साइन की? क्योंकि लंदन हो या दुबई हो, ये फेवरेट हॉन्ट है हमारे तमाम लोगों की जो माल बनाते हैं. जब हालात खराब होते हैं, चाहे वो फॉर्मर आर्मी चीफ्स हैं, चाहे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, ये दो तीन जगह फेवरेट हॉन्ट्स हैं उनकी. खासतौर पर न्यूयॉर्क इतना नहीं है, लेकिन लंदन और दुबई बहुत फेवरेट है.
नहीं नहीं सर, कैनेडा भी.
रीजन है कि कैनेडा सब बन गया ना, तो थोड़ा दूर बन जाता है ना, ये लंदन और दुबई करीब बहुत है, इसलिए ज्यादा फेवरेट है. अब देखिए एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज हर साल बात होती है, दहाइयों से हम सुन रहे हैं, होती नहीं है. इसीलिए कि अगर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हो गई तो फिर वापस हवाले कर दिए जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली एक रियलिटी है कि जो हमारे पार में लोग हैं, दे आर इंडिविजुअली टेलर्ड पॉलिसीज मोस्ट ऑफ देम, और फिर उसका नतीजा हम देख रहे हैं. इसलिए तो आम आदमी बेचारा भुगत रहा है.
सर आम आदमी कनाडा में भी भुगत रहा है कि विद इन $10,000 अगर हम बैंक में भी जमा कराते हैं तो क्वेश्चन आंसर्स आ जाया करते हैं, रेवेन्यू कनाडा इन्वॉल्व हो जाता है. बट अनफॉर्चुनेटली दीज पॉलिटिशियंस दे ब्रिंग मनी और यहां आके मेंशन जिन्होंने बाय किए हैं, इसमें आर्मी वाले भी लोग शामिल हैं. आप किंग सिटी की तरफ चले जाएं, आप यहां पे मिसिसागर रोड के ऊपर चले जाएं, दे डोंट इवन वांट टू मिंगल विद ऑर्डिनरी पीपल ऑफ पाकिस्तान. मेरा सर यहां पर आपसे एक सवाल आता है. बहुत सारी कंपनियां जो पाकिस्तान में काम करती हैं वो तमाम मैन पावर, मशीनरी, हर चीज पाकिस्तान से लेती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली चाहे वो बड़े पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो बड़े जर्नल्स हैं या आर्मी ऑफिसर्स हैं, दे इनमें से चंद एक ने तो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं कि उनको उनकी पेंशन डॉलर्स में मिलेगी. इवन द कंपनीज वर्किंग एंड हैविंग कॉन्ट्रैक्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी कंपनीज भी हैं, दे वांट देयर मनी इन डॉलर्स. इसके बारे में कुछ फरमाना चाहेंगे कि यानी उस मुल्क में से पैसा तो हर तौर पे उस मुल्क से बाहर निकल रहा है, उस मुल्क में आ नहीं रहा, रिजर्व्स आर गेटिंग वीकर डे बाय डे.
देखिए बात यह है कि ये तो कोई इसमें से सारी बातें जो कह रही हैं ये आई थिंक दहाइयों से चल रहा है. अनफॉर्चुनेटली हमारा जो असल मसला है वो पाकिस्तान में एक मसला ये है कि जो इदारे हैं वो इंडिविजुअल्स की तरह सोचते और रिएक्ट करते हैं, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने आप को इदारों से बड़ा समझते हैं. व्हाट पाकिस्तान नीड्स, मेरे ख्याल है दो तरीके हैं. एक तो ये कि हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहे, किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना, हमारी तो जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं वो इतने करप्टेड हैं और इतने फ्लॉड हैं और लॉज में इतने ज्यादा लकूनाज हैं कि वो होगा नहीं. अभी तो प्रोएक्टिव इनको सबसे पहले तो इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस लें जो मुल्क को खड़ा करें सही कदमों पे. अभी तो हमें एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड अनलेस दिस कंट्री और द गवर्नमेंट टेक्स इमीडिएट ड्रास्टिक रिफॉर्मेटिव मेजर्स, तो ये चीजें बिल्कुल सेकेंडरी हो जाएंगी, बिकॉज वो क्राइसिस बहुत बड़ा है. मैं तो बल्कि बड़े कई लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मैं तो सीरियसली कहता हूं कि शायद ये जो IMF वाला क्राइसिस आया है, पाकिस्तान IMF के पास पाकिस्तान अब चला गया है, शायद ये सिल्वर लाइनिंग हो, बिकॉज बहुत से ऐसी पॉलिसी मेकिंग, बहुत से ऐसे फैसले, मसलन रिटेल सेक्टर्स को, बाकियों को टैक्स नेट मिलाना, ये जो प्रिविलेज एलीट को सब्सिडीज थी गरीब आदमी के नाम पे वो बंद करना, बहुत सी ऐसी चीजें जो मुख्तलिफ हुकूमतों को खुद ही करनी चाहिए थी, शायद IMF के प्रेशर में आके इनको करनी पड़े. सो वी आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ फोर्स रिफॉर्म्स, सो लेट्स प्रे के फोर्स रिफॉर्म्स हो जाए, वरना पाकिस्तान आज इस नहर से पहुंचा क्यों है. जो आप बातें कर रहे हैं कि जो प्रिविलेज थे उन्होंने दबा के माल बनाया, लूटा, और यहां पे तो पॉलिसीज, टैक्स पॉलिसीज, एमनेस्टी पॉलिसीज ऐसी पॉलिसीज बनी है जो टारगेट जो वेस्टेड इंटरेस्ट टारगेटेड थे स्पॉन्सर्ड एंड साइड बाय देम। सो आफ्टर ऑल अगर एक मुल्क जो आज से सिर्फ 30 साल पहले जहां का मुझे याद है जब हम पढ़ते हैं कि पहला जो 4-year plan चाइना का 5-year plan बना था इट वॉज मेड विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी प्लानिंग कमीशन। जिस बंदे ने जाके 3 गॉर्जियस डैम बनाया था चाइना में वो पाकिस्तान में वापस टाइम उसने 12 साल काम किया था। हम लोगों ने सिंगापुर एयरलाइंस खड़ी की एमिरेट्स बनाई अब यही अब खुद नहीं खड़ी हो सकती। तो हमारी तो डिटेरियरेशन इसी लूटमार और कैपेसिटी क्राइसिस की वजह से हुई है ना।
अल्लाह करे कि जो मैं सिर्फ ये कहती हूँ जी सर ये रिवेंज की पॉलिटिक्स और अल्लाह करे कि ये जो जर्नलिस्ट को जेल में डालना उसको कवर नहीं करना लेट द ट्रुथ गो ऑन एयर एंड मेरा ख्याल
है वहाँ से मैं आपको एक बात कहूँ यकीन मानिए पाकिस्तान का बड़ा मसला जो है ना सबसे बड़ा क्राइसिस वो करप्शन नहीं है। करप्शन एक ऐसी चीज है जो हर सोसाइटी में होती है और सिस्टम अब्सॉर्ब करते हैं इट्स नॉट अ कंडेमेबल थिंग लेकिन सिस्टम अब्सॉर्ब करते हैं और डील भी कर सकते हैं। तबाह होता है निजाम कैपेसिटी क्राइसिस से। पाकिस्तान में सीरियस क्राइसिस है कैपेसिटी का हमारे तालीमी इदारे तबाह हो गए हैं आज स्कूलिंग सिस्टम इज गॉन। सो आज से मैं मुझे भी जब देखे जर्नलिज्म में हो गए 37-38 ईयर्स यकीन माने आज से 25-30 साल पहले जब हम मिलते थे ब्यूरोक्रेसी के बिगविग से आपको पता लगता था मजा आता था पढ़े लिखे वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्सेप्ट स्क्वेयर कैपेसिटी और आप यकीन माने आप ग्रेड 22 के अफसरों को मिलते और कहते हैं यार ये बंदा तो ग्रेड 15 के काबिल नहीं है। देर इज अ सीरियस कैपेसिटी क्राइसिस देर इज अ सीरियस एकेडेमिक क्राइसिस एंड अनलेस दीज कैपेसिटी क्राइसिस इज रिजॉल्व वी हैव अ सीरियस प्रॉब्लम।
In other words, you are saying at the moment it is money talks wali baat hai and Pakistan need drastic changes. Mera last sir, aapka international badi nazar hai. Friday ko America ki ek statement aayi thi, absolutely not. The pipeline between Iran, Pakistan and then China, because the main threat for the world is the next upcoming power is China, and to block China they are ready to pay any price. They can Pakistan ki eent se eent baja ke rakh sakte hain just to stop China. Ek choti si kurbani hogi. तो व्हाट डू यू से कि अगर चाइना ने फाइनेंशियली भी पाकिस्तान को बहुत हेल्प किया बट अगर टू ब्लॉक किया जाता है चाइना को एंड पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट या पॉलिटिकल जो हमारी जो भी है, लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं उस एजेंडा को जो कि वेस्ट का एजेंडा है तो हाउ वुड चाइना बिहेव एंड वुड दे लाइक इट।
देखिए मैं अपनी बात तो मैंने चाइना से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन और पर्सनल लेवल भी रहे हैं प्रोफेशनली भी एंड आई हैड अ चांस टू मीट अ लॉट ऑफ चाइनीज हाई ऑफिस इनकी पोलिट ब्यूरो के कुछ मेंबरान से भी एज बीइंग पार्ट ऑफ डिफरेंट डेलीगेशन। चाइना वाले को दुनिया थोड़ी सी मिसट्रीट करती है। एक तो चाइना कभी पाकिस्तान को यकीन माने आप शायद आपको हैरानी होगी कभी भी चाइनीज पाकिस्तान को ऐसी पोजिशन में नहीं डालते जहां उनको लगे कि पाकिस्तान को आइदर और की चॉइसेस करनी पड़ती है। चाइना खुद भी नहीं करता। मुझे बताएं ट्रंप के जमाने में चाइना का और यूएस का कितना स्टैंड ऑफ हुआ कितना सब कुछ हुआ उसमें चाइनीज ने क्या किया। चाइनीज ने हमेशा निगोशिएटेड सेट
नेवर एग्रेसिव।
चाइना कभी पाकिस्तान को उस पोजिशन में नहीं डालता जहां उसके लिए पॉसिबल सिचुएशन हो जाए। अमरीकन डालते हैं। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यह है कि हमारी सबसे बड़ी जो मार्केट है ट्रेडिंग वो अमरीका का ही है हमारी एक्सपोर्ट मार्केट। फिर IMF और तमाम चीजों पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली आपको भी पता है सबसे ज्यादा उन्हीं का दे होल्ड दिस वे। तो वो हमें एक बड़ी फाइन लाइन हम चलते हैं लेकिन यकीन मानिए वो अमेरिका की वजह से नहीं। चाइना ने हमेशा ऐसे मौके पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मनूवरिंग रूम दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि चाइना पाकिस्तान को किसी ऐसी पोजिशन में जाने देगा जहां पे मनूवरिंग रूम खत्म हो जाए पाकिस्तान के लिए। बल्कि अभी तो बात लंबी हो जाएगी मैं तो 2-3 आपको हिस्टोरिक चीजें भी गिना सकता हूं जहां पे चाइना एक्चुअली टुक 3-4 स्टेप्स बैक और लगा ये कि शायद हमने अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए हैं। लेकिन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक रिलेशनशिप विद चाइना, सो आई डोंट थिंक हम इसमें इतने फिक्स में आएंगे। और जहां तक वो पाइपलाइन कंप्लीट करने की बात थी, वो हमारा एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट था विद ईरान, और अगर वो यहां पे हम कंस्ट्रक्ट ना करें जो अब शुरू हो गया है, तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन है। बिल्डिंग पाइपलाइन राइट अप टू द बॉर्डर एंड कनेक्टिंग एंड स्टार्टिंग द फ्लो ऑफ गैस एवरीथिंग दैट इज डिफरेंट। सो वो हमारी पाइपलाइन बनने में और कनेक्टिविटी में फर्क है, और ये इरेनियंस और बाकियों को पता है कि इंटरनेशनल सैंक्शंस के होते हुए इतना सिंपल नहीं है। सो हमारे लिए बहुत मुश्किलात होंगी, लेकिन आई वुडंट वरी बियॉन्ड अ पॉइंट ऑन दैट।
इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग पे ठीक ठाक पाकिस्तान ने फाइन इसका पे किया, एंड नाउ दिस अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। लास्ट क्वेश्चन सर, पाकिस्तान की जब रिजीम चेंज आया था तो सिंध के इलाके में शदीद बारिशें हुई थी, चार दिन का रोना था, उसके बाद वी डोंट नो व्हाट हैपन टू दोज फैमिलीज, वर दे सेटल्ड। हदीका कयानी ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, बट अदरवाइज अब भी सर 24 घंटे से ग्वादर के इलाके में लगातार बलूचिस्तान के आफतजदा इस इलाके को करार दे दिया गया। नन ऑफ द पॉलिटिशियन इज टॉकिंग अबाउट एंड आस्किंग फॉर एनी मेजर्स टू बी टेकन देयर, नंबर वन। नंबर टू, नन ऑफ द पॉलिटिशियन इज टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंक्रीज आवर रेवेन्यू। यानी जो हमारे असल प्रॉब्लम्स हैं उनकी निशानदेही कोई भी नहीं कर रहा, मतलब हमें अपना अपना रोना धोना पड़ा हुआ है, तो व्हाई एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट रेडी टू टेक अ स्टेप।
आज इसमें दो डेवलपमेंट्स आई हैं, इसमें जो सरफराज बुख्टी है जो अब सीएम बने यस्टरडे बलोचिस्तान के, उन्होंने और टीवी पे आके कहा है कि जी मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 दिन के अंदर हम सबको कॉम्पनसेशन देंगे, और आज पीएम ऑफिस ने अनाउंस किया है कि कल या परसों आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू बलोचिस्तान ऑल्सो, दे आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट। जो आप दूसरी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो तो अब गवर्नमेंट बनेगी, बन गई है, अब आई थिंक कैबिनेट भी आ जाएगी 3-4 दिनों में, तो उसके बाद फिर इनका प्लान हम सुनेंगे, देखेंगे। आई एम श्योर दिल ले आउट अ प्लान क्या क्या करना है। अभी भी कुछ मोटी मोटी बातें तो वजीर आजम ने दी हैं, वो तो खैर आई थिंक होगा। जब जिस मुल्क में जब इतना ज्यादा चल रहा हो अभी इलेक्शन और छापे और लड़ाई है मार कुटाई, तो उस वक्त तो जाहिर है दीज थिंग्स विल टेक अ बैक सीट। बट लेट्स होप, आई थिंक इन द नेक्स्ट 3-4 डेज ये चीजें सामने आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज अब तो बहस इन पे ही होगी ना।
वी होप फॉर द बेस्ट एंड कीप आवर फिंगर्स,
कौन भाग गया।
We hope for the best and keep our fingers crossed. On the lighter mood, there was a time एक महावरा आया था कि कांपें टांग रही हैं। वो आज एक नई मीम आ गई है कि सरसों पे हथेली भी जमेगी अब पाकिस्तान में। Have you heard?
ये वाला तो मैंने अभी नहीं सुना, लेकिन मैं कहता हूँ जी कहीं थमे बस थम जाए।
बस जी, वो अब आज की मीम यही है कि अब सरसों पे हथेली जमेगी। लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर पाकिस्तान, ट्रेवल सेफ। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। बाजुका स्काइप पे लेने का और कोई मकसद नहीं होता, हम जब आप बात करते हैं, ऑफ कोर्स एवरीबडी कुड फील व्हाट यू आर सेइंग, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, मगर समटाइम्स देखने के बाद वी कैन फील वो अनसीन फियर ऑन समवन्स फेस, अनसीन सोरोज ऑन समवन्स फेस, तो दैट इज द रीजन वो स्काइप की एक रिक्वेस्ट होती है।
नहीं जी, हम डोंट वरी, हम बड़े रेजिलियंट हैं। पीपल इन पाकिस्तान ऑलवेज हैव अ हार्ड टाइम, तो हमारा थोड़ा सा जो क्राइसिस बैरोमीटर है ना, वो आप लोगों से मुख्तलिफ है। आपका तो अगर नेबर घास ना काटे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती हो, ये नेबर उठ के इसने घास की काटता लॉन खराब किया हुआ हमारे नजदीक।
मगर सर लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट,
भोजन भी 6 महीने में एक हो तो हम कहते हैं बहुत अच्छे हालात है। आपका हमारा क्राइसिस बैरोमीटर डिफरेंट है, डोंट वरी।
जी सर, लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट, अगर घास नहीं काटे और नेबर शिकायत कर दे तो दैट फाइन इज अराउंड $400 to $500 फॉर अ स्मॉल लिटल लॉन। बड़ी जगह हो तो क्या ही बात है, मगर आई विश ऑल द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। अल्लाह मेरे पाकिस्तान का हामी और नासिर है, आप जैसे प्यारे लोग। और मैं सामिन आप लोगों को बताना चाहती हूँ, खुदा गवाह है, आई रिक्वेस्टेड हिम, without any benefit. Sir, aapne time diya. Thank you very kindly, sir. Thank you very kindly.
Thank you for having me, ji. Aap log bhi sare khush rahe, apne hifazat se rahe. May bless you all.
Thank you very much. Thank you. Maine direct aapki un insaan se baat karai jo kareeb se is politics ko dekh rahe hain. There is no sensational news whatsoever. मुझे पता है कि आप ही आपके कंसर्न्स भी में मेरी रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी नेगेटिव न्यूज है. दिस नेगेटिविटी, वो तो कहते हैं अगर आपके घर में भी नेगेटिविटी आई ना तो नमक से अपना घर धोइएगा, दुआएं पढ़ें कि अल्लाह ताला नेगेटिविटी कार्ड किसे पास से, नेगेटिविटी कार्ड अल्लाह करे कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो प्रीवियस मुश्किलात को भूलते हुए, रिवेंजेस को भूलते हुए, वी गॉट टू स्टार्ट फ्रॉम द क्लीन स्लेट. I love you all. Please do subscribe our channel and we look forward for your feedback. Stay tuned. We'll come back.
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं. हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है. कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157. जी हाँ, 416-570-0157.
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए.
10 जगह क्यों? एक ही जगह है, फातिमा ग्रोसर्स.
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स. मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी. ग्रोसरी का सारा सामान ताज़ो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी. मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा. 9058487000. फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त.
विलेज टेस्ट, ओंटारियो का सबसे बड़ा पाकिस्तानी बफे, 40 से ज्यादा आइटम्स के साथ. एंजॉय करें हमारे डिलीशियस मेन्यू को. कढ़ाई, करीज, बारबेक्यू, बारबेक्यू प्लेटर, रोल्स एंड मच मच मोर. और अब डेली डिनर बफे और वीकेंड ब्रंच बफे भी. पार्टी रूम्स या कैटरिंग सर्विसेज के लिए कॉल 9052323663, 6477744888. विलेज टेस्ट.
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं. हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है. कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157. जी हाँ, 416-570-0157.
अंजुम कुरैशी बुनियादी तौर पर एक लॉ फर्म के साथ मुंसलिक है. आज से नहीं, बरसा बरस से लॉ फर्म्स के साथ वाबस्ता है जहां मुख्तलिफ लॉयर्स के साथ उनका साबका रहता है. किसी भी कानूनी पेचीदगी की सूरत में मशवरा जरूर कीजिएगा. आपकी अपनी जुबान में बात करती हैं अंजुम कुरैशी. 416-570-0157, 570-0157. आप प्लीज जिंदगी में हंसना बोलना भी बहुत जरूरी है और इन दोनों टेंशन और स्ट्रेस मुझे कहां से कहां ले गई. अंजुम कुरैशी की बातों को गौर से सुनिएगा. मगर मेरा एक सवाल है, मैं अगर इजाजत हो तो अंजुम मैं कर सकती हूं आपसे सवाल?
सबसे पहले तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, और अब आप सवाल कर सकती हैं.
बहुत शुक्रिया. मैंने कहा अंजुम भी सीरियस है, सारी दुनिया सीरियस है, मतलब मैं सीरियस बात करूंगी आपके साथ. आप मुझे बताइए, चांद की रोशनी को जब हम देखते हैं बड़ी ठंडी होती है, सूरज इतना गर्म क्यों होता है?
सूरज इतना गर्म क्यों होता है, चांद की रोशनी इतनी ठंडक क्यों होती है? हाँ. क्योंकि अल्लाह ताला को दुनिया बैलेंस करनी है. अगर सब कुछ इतना ठंडा और सब कुछ इतना चिल रहे तो उसके कहर का, उसके अजाब का, उसके गुस्से का किस तरह पता चलेगा? तो चांद जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत है और सूरज जो है वो ये बताता है कि कहर जब बरसाने पे आए अल्लाह ताला तो क्या कुछ कर सकता है.
मैं तो फेल होगी, अंजुम पास होगी, मगर मेरा ख्याल है कि जब माँ बच्चा मांग रही होती है तो कहती है अल्लाह मियां मुझे चांद सा बेटा देना. माँ जब बेटे को देखती है मेरा चांद जैसा बेटा, औरत अपने मियां को कहती है मेरा चांद जैसा शौहर. तो मियां बीवी से मोहब्बत करता है तो कहता है मेरी चांदनी चांदनी ओ मेरी चांदनी.
आप जो ना, आप कभी
सूरज बेचारा तपेगा नहीं तो और क्या करेगा, वो तो आग लगी हुई है उसको.
देखें एक गाना है सूरज हुआ मध्यम चांद ढलने लगा। हाँ तो जो ना सूरज मध्यम होता है तो अच्छी अच्छाइयाँ नजर आती हैं, लेकिन अगर आपको शौक है तो आप मांग लीजिए कि जो ना आपका बेटा जो ना सूरज जैसा हो जाए, फिर वो जब कहर बरसाए तो उससे नाराज मत होइएगा।
सूरज नाराज ही बेचारा इसलिए, अगर अगर हर आदमी कहे मेरे मियाँ की टिंट बिल्कुल सूरज जैसी है या मेरे मियाँ का पेट सूरज,
आज से जो ना आप ये टर्मिनोलॉजी निकाल लीजिए कि मेरे मियाँ का पेट बिल्कुल जैसे ना सूरज गोल होता है वैसा लग रहा है, और मेरे मियाँ का टिंट जो है ना वो सूरज की तरह लग रहा है, हमारा सहन जो है ना वो सूरज की तरह था, आज मैंने खाना पकाया वो बिल्कुल सूरज की तरह था, तो आप नई टर्मिनोलॉजी निकाल लीजिए।
आई लव यू अंजुम। सामान्य ग्राम ये तो थी एक, देखिए साहब जिंदगी में गम भी हैं, परेशानियां भी हैं, और अक्सर एक्सीडेंट पता कब होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं। ट्रस्ट मी युवा, जब हम ड्राइव कर रहे हैं एंड ऑटोमेटिकली सोच किसी परेशानी की तरफ गई तो डिवीजन ऑफ आवर माइंड, एंड ट्रस्ट मी दिस रिजल्ट्स इन एक्सीडेंट। किसी भी एक्सीडेंट की तौर पे आपकी अपनी जुबान बोलने वाली मोहतरमा अंजुम कुरैशी से आप मुलाकात कीजिए, बात कीजिए, आपकी अपनी जुबान बोलती हैं, एंड शी इज इन द लॉ फर्म वेयर शी इज इन कॉन्टेक्ट विद लॉयर्स इन जो कि एक्सपर्ट हैं इन डिफरेंट फील्ड में, एंड दे आर मेन स्ट्रीम के लॉयर्स जिन्होंने यहां पर पढ़ा, यहां उन्होंने जिरह करनी सीखी और यहां के मुताबिक ऑफकोर्स लॉयर इज लॉयर। हूं मैं वकील हो जाऊं मेरी फिर अंग्रेजी तो मैं सोचेगा तो मेरा दिमाग उर्दू में ना, बोलूंगी अंग्रेजी मगर सोचती मैं उर्दू में। तो अंजुम कुरैशी से एक बार मुलाकात कीजिएगा, इट्स अ लॉ फर्म वेयर शी